ओम शांति। आज बाबा पांचवा ग्रुप से मिल रहे हैं और ग्रुप ये जो बाबा ने मिले उसका हेडिंग है चिंताओं से फ्री सदा निश्चिंत वादी फिक्र बार रहने के लिए निश्चय बुद्धि बने। इस ग्रुप में बाबा खास निश्चय बुद्धि निश्चिंत और निश्चय के बारे में बताए हैं और वायुमंडल बनाने वाले हैं, वायुमंडल के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं है। अगर अटल निश्चय है तो अटल विजयी ही होगा, इसके बारे में बाबा बताए हैं। और कलप कलप के अधिकारी बच्चे हैं ये भी बताए हैं बाबा ने। सुना तो हम सुनेंगे बाबा जी बताए हैं। वो सदा अपने को कलप कलप की अधिकारी आत्मा अनुभव करते हो, बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं। अनेक बार यह अधिकार प्राप्त किया है और आगे के लिए निश्चित है कि कलप कलप करते ही रहेंगे। क्या अधिकार प्राप्त, यह पक्का निश्चय है ना? क्योंकि निश्चय है इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। अगर निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो क्या होता है, कभी भी हिलेंगे नहीं। चाहे कितना भी तूफान आ जाए, चाहे कितने भी भूकंप हो जाए, लेकिन क्या हिलेंगे नहीं, क्योंकि फाउंडेशन पक्का है। अभी भी देखो, प्रकृति का भूकंप आता है तो कौन सी बिल्डिंग गिरते हैं, जो कच्चे होते हैं, जो कच्ची होती है, पक्के फाउंडेशन वाले नहीं गिरेंगे।
फाउंडेशन क्या होता है?
हाँ जी,
फाउंडेशन क्या होता है?
निश्चय का फाउंडेशन। तो आपका फाउंडेशन कितना पक्का है बाबा पूछ रहे हैं हमसे, हिलने वाला है क्या? निश्चय का फाउंडेशन हिलने वाला है क्या? हिलेंगे नहीं, लेकिन थोड़ी दरार आ जाएंगी। चलो हिलेंगे नहीं, लेकिन दरार तो नहीं आएंगी, टूटेंगे नहीं, लेकिन दरार तो नहीं आएंगी। हिलने वाला है क्या? हिलेंगे नहीं, लेकिन दरार आ जाएंगी, थोड़ी भी नहीं। क्योंकि कोई तो गिर जाते हैं, कोई गिरते नहीं, लेकिन दरार आ जाती है तो आप उनसे पक्के हो, इसलिए हिलेंगे भी नहीं और क्या नहीं आएंगे, दरार भी नहीं आएंगे। तो निश्चय की निशानी है हर कार्य में, मनसा में भी, वाणी में भी, कर्म में भी, और क्या बाबा ने बोला, संबंध संपर्क में भी, हर बात में सहज विजय है हो। मेहनत करके विजय बने वह विजय नहीं, अगर पुरुषार्थ बहुत तंग होके फेल होके फिर विजय बने लास्ट में, वो विजय नहीं, सहज विजय हो एक ही बार में। सहज विजय तो निशानी दिखाई देती है या विजय प्राप्त करने में मेहनत लगते हैं। बाबा बोलते हैं कि अपने आप से पूछो कि सहज विजय में मेहनत लगती है या सहज विजय हो जाते हो, कभी सहज कभी मेहनत, लेकिन निश्चय की निशानी है सहज विजय। अगर मेहनत लगती है तो समझो कुछ मिक्स है। क्या मिक्स है बाबा ने बोला आज, मिक्स संशय की मिक्स नहीं है लेकिन व्यर्थ की मिक्स है। तो आगे हम सुनेंगे, संशय नहीं भी हो लेकिन कुछ व्यर्थ मिक्स है हमारे मन में, जो व्यर्थ बातें चलती ना उसमें भी क्या होता है तो निश्चय में कमी आ जाती है, इसलिए सहज विजय नहीं होती। नहीं तो विजय निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए तो सदा अवेलेबल है। अगर हमारी विजय नहीं है माना क्या, निश्चय में थोड़ा सा कमी है, उसका स्थान ही वह है जहां निश्चय है वहां विजय होंगी। निश्चय वालों के पास ही जाएंगी ना, कहां जाएंगे विजय, कहां जाएंगे, जहां निश्चय है, जहां लगन है, जहां त्याग है, जहां तपस्या है, जहां दिल से सब कुछ करते विजय वहीं तो जाएंगे और कहां जाएंगे, उनका स्थान ही बाबा ने बोला है। तो निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बात में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय हो, हम उसी बाप के बच्चे हैं, कलप कलप के अधिकारी बच्चे हैं, कलप कलप के विजयी बच्चे हैं, अपने आप में भी निश्चय। फिर बाबा ने बोला ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय हो, ड्रामा के हर दृश्य में निश्चय, तभी कहेंगे संपूर्ण निश्चय बुद्धि। अगर बाप में निश्चय है लेकिन अपने आप में नहीं, तो चलते चलते क्या हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, होते हैं। तो निश्चय नहीं है तब तो होते हैं, तो अब तो वह भी अधूरा निश्चय हुआ। अगर बीच बीच में हम दिल शिकस्त हो गए कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, दूसरे कुछ भी नहीं करता है, मैं सब कुछ ठीक ठाक करता हूं, फिर मेरे को ही लोग तंग क्यों करता है। तो चलते चलते दिलशिकस्त होते हैं, तो निश्चय नहीं है तब तो होते हैं, तो वह भी अधूरा निश्चय हुआ। बाप में भी है, अपने आप में भी है, लेकिन गड़बड़ कहाँ होता है, परिवार की जब बातें आती है तो डगमग हो जाते हैं बाबा,
ग्रुप भी बेहतर है,
लेकिन परिवार में नहीं है, फिर परिवार के कारण डगमग होते हैं, तो अभी अधूरा निश्चय के हैं। ड्रामा में भी फुल निश्चय हो, जो हुआ सो अच्छा हुआ, इसको कहते हैं ड्रामा में निश्चय। ऐसे संपूर्ण निश्चय बुद्धि हैं, बाबा पूछ रहे हैं कि अपने आप से पूछो कि ऐसे निश्चय बुद्धि हैं, कभी तो फुल है और कभी आधा है, ऐसे तो नहीं है। जब अनेक बार का नशा है तो अनेक बार विजय बने हो, अब रिपीट कर रहे हैं, विजय बनने के लिए क्या कर रहे हैं, इस बार हम रिपीट कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो रिपीट करना तो सहज होता है ना। तो निश्चय बुद्धि विजय सदा यह स्मृति रहे, बाबा बोलते हैं निश्चय बुद्धि सदा विजय यह स्मृति रहे। निश्चय भी है और विजय भी है, ये नशा हो कि हमारी विजय नहीं होंगी तो किसकी होंगी, विजय है और सदा होंगी, विजय है और सदा होंगी। ये जो ड्रामा की बात जो बाबा आगे बताया मेरे को बहुत फायदा किया, मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो अटल निश्चय हो, टलने वाला नहीं, निश्चय हमारा कैसा हो,
अटल
हो, टलने वाला नहीं, हिलने डुलने वाला नहीं। थोड़ी सी बात हुई निश्चय अटल नहीं रहे, ऐसा निश्चय नहीं हो, अटल निश्चय तो अटल विजयी होंगी, ये क्या है तो भगवान बाजे ध्रुव सत्य है, विजय की भावी टल नहीं सकते, अटल है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि सदा हर्षित रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि चिंता खुशी को खत्म कर देती है, और निश्चिंत है तो खुशी सदा रहेंगी। चिंता क्या करती है, खुशी को खत्म कर देती है। कहावत है ना कि जो चिंता वाले लोग हैं कई बार शमशान में जलते हैं, जो मुर्दा होते हैं एक ही बार जलते हैं। तो निश्चय बुद्धि की दूसरी निशानी है निश्चिंत, नहीं तो थोड़ी बात भी होंगी तो चिंता होंगी कि ये क्या हुआ, ये ऐसा हुआ, इस क्यों क्या से भी निश्चिंत, क्या कैसे, ये चिंता की लहर है। अभी बड़ी चिंता नहीं होंगी, इस रूप में भी होना नहीं चाहिए था, हो गया, ऐसा वैसा क्यों क्या कैसा, ये शब्द बदल जाते हैं। तो ऐसे है कि कभी कभी क्वेश्चन मार्क होता है, कहीं कहते हैं ना कि मेरे पास ही ये क्यों होता है, मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, कहीं से बोलते ना कि मेरे को ऐसे तंग क्यों करता है, मैं तो सब कुछ करता हूँ, टाइम पे सेवा पे जाता हूँ, टाइम पे सब कुछ करता हूँ, फिर मेरे को ही तंग, चार बातें सुना देते आते, वो खुद ही लेट आया है ना, होता है ना कई बार, मेरा ही हिसाब किताब कड़ा है क्या, तो क्यों आना माना चिंता की लहर है। तो इस चिंताओं से भी परे इसको कहा जाता है बाबा कहते हैं निश्चिंत। तो कौन है निश्चिंत, हो या थोड़ी थोड़ी क्यों क्या है निश्चिंत। निश्चिंत आत्मा का स्लोगन क्या है,
निश्चिंत आत्मा का स्लोगन है अच्छा हुआ अच्छा है और अच्छा ही होना है, अच्छा है अच्छा हुआ और अच्छा ही होना है। बुराई में भी अच्छाई अनुभव करेंगे, बुराई में भी क्या करेंगे, कोई हमसे बुरा व्यवहार करता है तो उसमें भी हम अच्छाई अनुभव करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा नहीं कठिन नहीं थोड़ा सा अपने आप को रोकना पड़ता है,
धैर्य रखना
पड़ता है, तुरंत रिएक्ट करने से गड़बड़ हो जाता है,
थोड़ी देर बाद
रिएक्शन होता है उसका, अगर थोड़ा रुक जाएंगे ना, नहीं रियल बता दो, थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ी देर रुक जाए ना, फिर सोल्यूशन निकल जाता है। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लेंगे, बुराई को बुराई के रूप में नहीं देखें, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। चिंता शब्द से अविद्या हो, जैसे गायन है ना इच्छा मात्र में अविद्या, ऐसे बाबा बोले हैं आगे चिंता से भी अविद्या, चिंता से भी अविद्या, ऐसे चिंता की भी अविद्या हो, चिंता क्या होती है या अनुभव नहीं हो तो ऐसी अवस्था, इसको कहा जाता है निश्चिंत। कोई भी बात है तो क्या होगा नहीं नहीं आएगा, क्या होगा नहीं आएगा, फौरन यही आएगा अच्छा होगा, बीत गया अच्छा हुआ, जहां अच्छा है वहां सदा क्या है तो बेफिक्र बादशाह है। तो निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह, तो ऐसे है या थोड़ा थोड़ा फिक्र आ जाता है, बेफिक्र बादशाह कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी फिक्र आ जाते हैं, बाबा पूछ रहे हैं, तो बेफिक्र बादशाह ही बाप समान है, बाप को फिक्र है क्या, इतना बड़ा परिवार होते भी फिक्र है क्या बाप को, अभी नीचे मेरे को लगता है 20,000 आ गया होगा कि ऊपर आ गया होगा, कितना
30
आ गया, फिर भी बाबा को फिक्र नहीं,
सब बैठा है नीचे वाले को
नहीं, लेकिन नीचे बाबा ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया कि नीचे वालों की उतना फिक्र नहीं होता, सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र, ऐसे बेफिक्र हो। ये बाबा ने सकार बाबा के लिए बोले कि सकार बाबा को आते थे तो भी इतना नहीं होता था, सब हो जाते थे, माताएं बेफिक्र हुआ प्रवृत्ति में जाकर थोड़ी फिक्र हो जाता है, माता जी बाबा पूछ रहे वायुमंडल में जाकर थोड़ा प्रभाव तो पड़ नहीं जाता है, वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता, अपना प्रभाव वायुमंडल पर डालो, वायुमंडल में वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्यों नहीं पड़े बाबा ने बोला है क्योंकि क्योंकि आप मास्टर रचयिता हो, वायुमंडल को रचने वाला हो आप, वायुमंडल क्या है तो रचना है, क्योंकि वायुमंडल रचना है, आप मास्टर रचता हो, वायुमंडल बनाने वाले कौन, मनुष्य आत्मा, तो रचता हो गया ना, तो रचता हो वायुमंडल बनाने वाला कौन, मनुष्य आत्मा, तो रचता हो गया ना, तो रचता के ऊपर रचना का प्रभाव नहीं हो, लेकिन रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो, तो कोई भी बात है तो यह याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूं। अच्छा बाबा आज महाराष्ट्र और गुलबर्गा से मिल रहे हैं, अच्छा ये महाराष्ट्र और गुलबर्गा है, ब्रैकेट में लिखा है अर्थ कोई आता रहता है, इसके लिए सुनाया है कि निश्चय बुद्धि रहो, होना ही है आगे चलकर अति होना है, आगे चलकर बाबा बोले हैं कि अति होना है या कम होना है, तो अति का आह्वान कर रहे हो या घबराते हो, घबराने की कोई बात नहीं, अगर शरीर जाएगा तो भी गारंटी है और रहेगा तो सेवा करनी है, दोनों में अच्छा है, शरीर जाए तो भी अच्छा और यहाँ रहे तो भी अच्छा, और मैं तो और भी एक बात ऐड कर देता हूँ, बीमार हो तो भी अच्छा, क्योंकि हिसाब किताब चुप हो जाता है ना, है ना,
वो आपको अच्छा लगता है कि बीमार वाले को पूछना,
नहीं मैं भी बीमार रहता तो मुझे भी लगता है, मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेता हूँ,
अच्छा
हाँ छुट्टी मिल जाती नहीं तंग नहीं होता हूँ सेवा से, सेवा से तंग होना मना दुखी होना, बाबा ने बोला चिंता से मुक्त निश्चिंत, तो सेवा से तंग नहीं होता हूँ लेकिन थोड़ा मेंटली फ्री हो जाता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं, अगर शरीर जाएगा तो भी गारंटी है और रहेगा तो सेवा करनी, दोनों में अच्छा है, तीन पैर पृथ्वी तो मिलनी है, बेफिक्र होना नॉलेज है ना, इसीलिए बेफिक्र है, सारी सभा बेफिक्र बादशाहों की बैठी है ना। जाने वाले कहां भी होंगे तो जाएंगे, चाहे भूकंप में जाए चाहे किस स्थिति में जाए, अच्छे अच्छे चलते चलते भी चले जाएंगे। बाबा को बोला होगा, बाबा अर्थक्वेक आ रहा है ना, बहुत लोग साइड छोड़ रहे हैं, तो बाबा बता रहे इसके बारे में। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, जाने वाले या किसी छोड़ के जाने वालों के लिए बताया है। अच्छा पता नहीं, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, जाने वाले चले गए लेकिन फिक्र आपको देकर क्यों गए, क्यों जाए, फिक्र भी साथ लेकर चले जाए ना, ज्ञान की शक्ति है ना। अच्छा होने वाला होना ही है, आप सभी तो बेफिक्र बादशाह हो ना। ओम शांति। तो बाबा ने ये ग्रुप से मिले हैं, और मैं बीच में बताया था कि ये जो ड्रामा का ज्ञान है मेरे को बहुत मदद किया। तो मैं मेडिटेशन घर में भी करता था, उधर अमृत वेला सब सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ समय और जगह चेंज होने से थोड़ा सा देर से नींद आता था, और देर से नींद आने के कारण थोड़ा उठता तो था लेकिन थोड़ा फ्रेशनेस नहीं लगता था। फिर ये बहुत लंबा समय तक चलता था, बहुत लंबा समय तक चला, तो मैं कहा मैं यहाँ आते ही क्या हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मधुबन में आया कि खूब तपस्या करेंगे, खूब करेंगे, तो क्या गड़बड़ हो रहा है। फिर हमने थोड़ा सा ज्ञान का यूज किया, अच्छा से चिंतन किया, बहुत अच्छा सोच विचार के फिर ड्रामा का थोड़ा सा ज्ञान को यूज किया, फिर ड्रामा अच्छा बना है। बाबा ने यहाँ पे बुलाया है, सेवा दिया है, रहने का स्थान दिया, हर चीज ठीक दिया है। फिर देर से नींद तो आप सब कुछ अनुभव होगा कि नहीं पता नहीं, कुछ कुछ बातें मन में चलते रहते, चाहे सोने के लिए लेकिन सो नहीं पाते लोग। तो फिर मैं थोड़ा सा इस बात को थोड़ा चिंतन किया ठीक से, और मैं कहा ड्रामा बाबा ने बनाया है, बाबा को पसंद है, और मेरा पार्ट भी इस ड्रामा के अंदर अच्छे से अच्छा बाबा ने बनाया है, तो फिर मेरे को इतना सोचने की जरूरत क्या है। फिर मैंने इस बात को हल्का करके, फिर भी कभी कभी नहीं आए तो फिर हमने एक अभ्यास किया कि बाबा को बुलाता था, शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के तन में, और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से तो हम बुलाते थे अपने खाट में
खटिया में।
हाँ, और बाबा के इसमें ना जांग के ऊपर मैं अपना जो तकिया को बाबा का जांग समझ के अपना सिर रख देता था, और फिर बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, जैसे छोटे बच्चे को माता पिता बोलते ना, माँ बोलती खास करके, सो जा बच्चे। तो ऐसे मैं कुछ दिन लंबा समय तक किया, तो मेरा नींद अभी 3-4 साल से बहुत अच्छा है, और अमृत वेला भी एकदम अच्छा कर रहा हूँ। और अमृत वेला में कल बात चल रही थी तो मुझे एक बात याद आया कि सो जाते हैं अमृत वेला में क्लास में आकर, तो मेरा जब ये 2-3 साल तक जब ऐसा चला ना, तो फिर भी मैं अमृत वेला आता था लेकिन सोता ही था। मैं लक्ष्य ले लिया था कि भले वहीं जाके सोना है लेकिन खाट पे नहीं सोना है क्लास में जाके, लेकिन खाट पे नहीं सोना है। तो मैं लक्ष्य लिया कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, उठेंगे नहीं तब तो फिर तो गड़बड़ बात है, तो फिर अभी नींद नहीं आता है। तो मेरा कहना ये था, ये मैं आप सबको ये इसलिए सुनाया कि अगर कोई सोता ही है तो उनपे सुभावना रखिए, मेरे जैसे वो भी ठीक हो जाएंगे शायद। और भाई साहब कल बोल रहे थे हमारे डॉक्टर साहब की, डॉक्टर पेशेंट से जो जैसे कैसे संबंध में रहते हो ये भी सुनाना। तो बाबा ने यहाँ पे मधुबन तो सुखधाम है ही, स्वर्ग आश्रम है ही, तो जितने भी मधुबन निवासी को बाबा ने यहाँ रखा है, सभी को सुख पहुंचाने के लिए, जो भी भाई बहन आते हैं तो जो यहाँ रहते हैं उनको भी सुख पहुंचाने के लिए रखा है। तो मैं लक्ष्य रखता हूँ कि सबको सुख पहुंचे, सबको समय पे हमारे से मदद मिले, तो मैं मदद, मेरे करने से अगर कुछ होता है तो मैं करूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्री हैं पूरा, उनके पास कोई ज्यादा सेवा भी नहीं है, फिर भी वो देर से ही आएगा, बोलेगा मेरे को अभी ये चाहिए। कभी मन में थोड़ा सा आता है कि भाई ये क्या हो रहा है, फिर बोलते भी हैं भाई आप टाइम पे आओ, तो फिर बोलने के बाद फिर थोड़ी देर में मन में आता है चलो बेचारा बीमार है तभी तो बोला है, फिर दे दो। फिर जो करना होता है कर देते हैं, जो मदद करना है जो चाहिए उनको दे देते हैं, फिर मन हल्का, अगर नहीं दिया तो फिर दिल खाता रहता है, फिर कमरा में भी गया तो नींद नहीं आएगा, फिर थोड़ा तो इसीलिए मैं इस बात पे ध्यान रखता हूँ। और एक आपको अनुभव सुनाता हूँ, मैं ये डिस्पेंसरी लाइन में कैसे आया। मैं दसवीं में पढ़ रहा था, तो मेरा जो लौकिक टीचर था ना, वही मेरे को ज्ञान मिला है। उनके घर में गीता पाठशाला थी, तो वो थोड़ा अलग हिस्ट्री है। तो उनको एक इंजेक्शन लगाना था, तो एक डॉक्टर एक क्लिनिक में गए, तो तीन बार उनको घुमा दिया कि अभी आओ तो शाम को आओ तो कल आओ, ऐसे ऐसे बोल के तीन चार बार उनको घुमा दिया। तो उनको बहुत बुरा लगा। तो पता नहीं मेरे को मेरे अंदर क्या उनको विशेषता दिखाई दिया। तो मेरे को बोला तुम इंजेक्शन लगाना सीखोगे? तो मैं तो घबरा गया। मैं कहा इंजेक्शन लगाना वो तो डॉक्टर करता है। बोला नहीं हो जाएगा तुम, मैं बताता हूँ। तो पहले तो कांच का होता था ना सिरिंज वगैरह, तो मेरे को केला के पेड़ में पानी भर के लगाने के लिए सिखाया। फिर बोला ऐसे क्लीन करो, ऐसे पकड़ो, फिर ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे सिखाया। तो मैं कहा ठीक है, एक दो बार किया। फिर बोला कि मैं लेटता हूँ, तुम ऐसे क्लीन करो, कमर में लगाना था, फिर ऐसे पकड़ो, ऐसे लगा दो। तो धीरे धीरे दवाई को पुश करना, पहले ऊपर खींचना, देखना ब्लड आता है तो नहीं लगाना, ऐसे बोला मेरे को। तो जैसे जैसे बोला वैसे ऐसे कर दिया। तो बोला अरे तेरे से तो दर्द भी नहीं हुआ। हुआ कि नहीं पता नहीं मेरे को, लेकिन मेरे को ऐसे ही बोला वो। तो मैं कहा ठीक है। तो उनका पांच का डोज था या चार का, मतलब जितना भी था, न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन था, तो हमने लगा दिया। फिर बहुत अच्छा, उनको कुछ नहीं हुआ, तो मैं खुश हो गया अंदर ही अंदर। फिर मेरी नानी कमजोर हो गई घर में, तो पहला दोबारा इंजेक्शन नानी को लगाया, माना दूसरा पेशेंट में। तो नानी को भी एकदम ठीक हो गया, दर्द भी नहीं हुआ, एकदम ठीक है। तो वो वहीं पे बंद हो गया। उसके बाद मैं मैट्रिक दिया, तो पढ़ाई में क्या था कि मैं सबसे बहुत कमजोर स्टूडेंट था, उसमें भी इंग्लिश तो सुनते ही मेरा सिर भारी हो जाता था। तो मैट्रिक देने के बाद क्या हुआ कि दो तीन चार महीना गैप रहता है ना, नेपाल में एसएलसी बोलते हैं, तो हमारे जीजाजी हिसार में रहते हरियाणा में, तो मैं वहां चला गया, थोड़ा सा तीन चार महीने गैप था। तो हमारे पिताजी को ना पता नहीं मेरे ऊपर कितना विश्वास था, पता नहीं मेरे को, लेकिन वो कोई दवाई का दुकान खरीद बेच रहा था ना, तो खरीद लिया कि मेरा बेटा पढ़ लिया। तो उस बीच में रिजल्ट जो आ गया था ना, तो हमारे गांव में मैट्रिक में कोई एक बार में पास नहीं किया था, लेकिन मैं एक बार में पास किया, तो वो बहुत खुश हो गया। तो मेरे पास मैसेज आया कि दवाई का दुकान ले लिया है, तुम आ जाओ। अब देखिए पढ़ाई से और मेडिकल स्टोर से कितना कनेक्टेड होता है, वो तो आप सब समझ सकते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। फिर मैं गया, अब मैं तो बड़ा मजबूर हो गया, मैं क्या करूं नहीं करूं, तो अब ले लिए हैं तो करना ही पड़ेगा, कुछ समझता भी नहीं, इंग्लिश पहले से कमजोर। तो जैसे तैसे करके फिर हम मेडिकल स्टोर में बैठने लगे, तो समझ तो कुछ नहीं आता था। फिर वहां क्या होता है गांव में चाहे मार्केट में, कोई एक दूसरे को हेल्प करना नहीं चाहता, क्योंकि ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे ना, अगर इनको नहीं चलेगा तो ऐसे करके। तो फिर जैसे तैसे ऐसे मना करते धरते, थोड़ा संघर्ष कर करके, फिर एक फैमिली डॉक्टर जो हमारे घर में आते थे वो बैठने लगे, तो थोड़ा उनके मदद से बाद वो ज्ञान में भी चला, फिर उनके घर में गीता पाठशाला भी हुआ, तो मदद करते करते सीख लिया था। फिर वो मेरे को लोग बुला के ले जाता था कि तुम चलो, मेरे को थर्मामीटर से बुखार भी चेक करने नहीं आता था, तुम चलो मेरे को दवाई दो, ऐसे हाथ पकड़ता था, ऐसे करता था, दवाई देता था, ठीक हो जाता था लोग। तो ऐसे करते 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 फिर चलता रहा, अच्छा था, कमाई भी ठीक ही था, उतना गड़बड़ नहीं था गांव के हिसाब से। फिर ना उसमें थोड़ा झूठ मूठ बोलना पड़ता, तो कुमार होके झूठ बोलना ये सब थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मैं क्या होशियारी किया कि मैं सोचा नौकरी रहूंगा ना, तो झूठ भी बोलूंगा तो मालिक के लिए, कम भी दूंगा तो मालिक के लिए, ऐसे सोच के मैं उसको बंद करके नौकरी चला गया। मैंने अपना बीके भाई के ही साथ में उनको मदद किया, तो उसमें तो और झंझट, टाइम पे छुट्टी भी नहीं, टाइम पे खाना भी नहीं, सेंटर पे भी जाओ तो पूछ के जाओ, पांच मिनट लेट हुआ तो गड़बड़, बड़ा मुश्किल काम। मैं तो धर्म संकट में पड़ गया और मेरा जीवन भारी लगने लग गया। बीच बीच में मधुबन में आता था मैं। 99 में 15 दिसंबर में पहले बार बाबा से मिला था। उस समय बाबा जो है ना लाइन में घूमते थे चारों तरफ, हाँ, तो हम साइड में बैठे थे, तो बहुत अच्छा दृष्टि मिला था मेरे को बाबा से। और अमर भाई जी का घर और मेरा घर पास में ही है, 10-12 किलोमीटर का फर्क होगा। तो जब पढ़ाई करते थे ना, तो जान पहचान थी मेरा पहले उनसे, वो मधुबनी में आईएससी का पढ़ाई करते थे उस समय, तो आते थे तो अमर भाई से थोड़ा बातचीत होता था। और एक क्या था कि अमर भाई जी का था होलसेल स्टोर और मेरा था रिटेलर, उनका मार्केट में था, मेरा थोड़ा गांव के बाजार में था, तो ऐसा तो उनसे दवाई लेते थे और थोड़ा पहचान बन गई थी। तो फिर मैं नौकरी रहने लगा था और मेरा मेरे को थोड़ा भारी हो गया, मैं पता नहीं कहाँ उलझन में फंस गया, अपना ही कारोबार ठीक था। फिर कभी आता था कि कुमार होके इतना उलझन क्यों करने का, झूठ मूठ बोलने का, व्यापार करने का, ये सबसे थोड़ा सा वो होता था। तो फिर क्या किया कि हमने नौकरी भी छोड़ के अब समर्पित होना है, ऐसे सोच लिया। तो समर्पित कहाँ होना है, सेंटर पे भी बहन जी बोल रही थी तुम यहाँ रुको, और मधुबन में अमर भाई बोल रहे थे कि कभी तेरा दिल हो तो तुम मेरे को बोलना एक बार। तो मैं कहा ठीक है। तो मधुबन में एक बार फोन से बात हुआ था कि अब मेरा विचार है कि ये सब झंझट नहीं करने का, फिर मैं अब समर्पित हो जाऊंगा, आप बोलो तो इधर या तो उधर, ऐसा ठीक है। तो मैं बोला कि रुको इधर देखता हूँ। तो फिर भाई साहब से बात किया, तो अमर भाई के पास भी जरूरत था और डिस्पेंसरी में भी जरूरत था, तो आ गए। अब देखिए मेरा इंग्लिश पहले से कमजोर, और आ गया मैं इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में, अब वो भी डिस्पेंसरी विभाग में। तो भी बाबा की मदद से आप सबके सहयोग से सेवा कर रहा हूँ। थैंक यू, ओम शांति।
विलायत वाली बात सुना दो ना।
वो क्या हुआ कि बाबा का मुरली तो हम रोज सुनते थे, तो सुनते थे तो उसमें बिलायत आता था, नाम आता है ना कि बिलायत में सर्विस अच्छा होगा, अच्छे बच्चे निकलेंगे, ऐसे ऐसे आता है ना। तो इतना गांव के रहने वाले हम तो उतना तो देश का अमेरिका सब सुनते थे, रूस जापान सुनते थे, लेकिन बिलायत का नाम मुरली में सुनते थे, लेकिन कहाँ है पता नहीं था। तो मधुबन में आया, थोड़े दिन हुआ तो बिलायत बिलायत बाबा बोलते थे, लेकिन यहाँ ट्रांसलेशन में तो कहीं बिलायत लिखा नहीं देखता था। हाँ नहीं, इधर ट्रांसलेशन विभाग में। तो मैं कह रहा हूँ बिलायत से लोग आता है कि नहीं, बाबा तो बार बार याद करते हैं। तो मैं पूछू तो पूछू किसको शर्म भी आ रहा है, बड़ा मुश्किल, नहीं पूछू तो जानकारी भी होनी चाहिए। तो डॉक्टर कैलाश को पूछा। हाँ, तो बोला बिलायत माना विदेश होता है, ऐसे बोल दिया। मैं खाई क्या होता है बिलायत माना विदेश, कोई देश होगा ना वहां से लोग आता भी होगा। मैं ऐसे बोला मन में सोचा, तो मैं उनको दोबारा पूछू तो भाई साहब थोड़ा सा वो हो जाते हैं, तो नाराज हो जाते हैं। दोबारा उनसे नहीं पूछा। तो फिर मैं क्या करूं, तो अमर भाई जी को पूछा। मैं कहा बिलायत से तो लोग आते ही नहीं, दो तीन साल हो गया मेरे को यहाँ पे। तो अमर भाई जी बोले कि बिलायत माना बाबा जितने भी विदेश के भाई बहन आते हैं उनको बिलायत बोलते, माना बिलायत माना विदेशी। मैं कहा अच्छा, माना डॉक्टर कैलाश ठीक ही बोला था, ओम शांति।
तो आप कहाँ से हैं, बिलायत से हैं ना अभी?
ओम शांति। आशीष भाई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है अस्पताल और मधुबन के बीच। क्या सुनाए, बाबा निश्चय की बात कर रहे थे, जब मैं सुन रहा था तो मुझे एक बात याद आई। बाबा ने कहा संपूर्ण निश्चय बुद्धि अगर है तो विजय सहज है, विजय मुश्किल नहीं हो सकती। तो निश्चय के बारे में मम्मा की एक बात है जो याद आई, कि कभी मम्मा को किसी ने पूछा कि आजकल बाबा जहां जीत वहां जन्म, ये बात आजकल मुरलियों में आती नहीं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? मम्मा को किसी ने पूछा कि बाबा पहले तो बहुत कहते थे कि जहां जीत वहां जन्म, आजकल मुरलियों में ये बात आती नहीं है, तो आपका क्या विचार है? तो मम्मा ने कहा मेरा विचार कहां से आ गया, जो बाबा का विचार है वही मेरा विचार है, जो वो कह रहा है बस वही सत्य है। इसमें थोड़ा सा भी मतलब उसके महावाक्यों में बाबा का जो ज्ञान है उसमें संपूर्ण निश्चय होना, एक बात मतलब हमारा निश्चय इतना अटल हो कि चाहे सारी दुनिया कहे कि ये झूठ है परंतु हम अटल रहे, अडिग रहे। तो ऐसा जब निश्चय होगा तो विजय होगी, और विजय भी सहज होगी। अगर विजय में मुश्किल लगता है तो समझ लेना निश्चय कहीं ना कहीं मिक्स है, संशय के साथ नहीं, आज क्या कहा, व्यर्थ के साथ। और सभी बातों में निश्चय, स्वयं में, बाबा में, इस ड्रामा में, इस परिवार में, तीनों में निश्चय तो ठीक है, परंतु परिवार में निश्चय कभी कभी कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारे जन्म जन्म के हिसाब किताब ब्राह्मणों के साथ है, तो वो ब्राह्मणों के द्वारा ही चुप्त होने हैं। दूसरी एक बात मुझे मम्मा के बारे में और एक याद आ रही है, जो कल भी हमने डिस्कस की थी कि मम्मा कभी एक बार सेवा के लिए गए थे बैंगलोर, डेढ़ मास सेवा करके आए वहां से। फिर मम्मा से किसी ने कहा कि कैसी रही सेवा, बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं की थी मम्मा ने, मम्मा ने सेवा समाचार सुनाया, बहुत अच्छी थी। सेवाएं कैसी थी, अच्छी थी, बस इतना ही सेवा समाचार, उसका कोई वर्णन नहीं, उसका कुछ भी नहीं, कैसी थी, अच्छी थी। उनके साथ जो भाई गया था उसने कुछ थोड़ा थोड़ा बताया, पर मम्मा कुछ भी नहीं। गुप्तगामिनी कहा है भक्ति मार्ग में सरस्वती को, गंगा जमुना तो दिखती है पर सरस्वती गुप्त है, तो जो पुरुषार्थ जितना गुप्त है उतना वो आत्मा अधिक शक्तिशाली है। तो पुरुषार्थ में जो दिखावा, पुरुषार्थ में जो एक शो रहता है वो कहीं पर भी नहीं था। यज्ञ में भी देखे तो मम्मा संपूर्ण गुप्त है, संपूर्ण गुप्त, कहीं बहुत कम जगह वर्णन है, वो तो लोग भूल भी गए थे 24 जून को, वो तो बाद में जब लगा सबको कि कुछ तो करना चाहिए तब फिर चालू किया वो 24 जून का। ये मैं इसके लिए भी सुना रहा हूं क्योंकि 24 जून आने वाला है। तो निश्चय की जब बात आती है तो संपूर्ण निश्चय अर्थात मम्मा समान निश्चय, जो उसने कहा जिस समय कहा उस पर संपूर्ण निश्चय, बस वही सत्य, इसके आगे जो कुछ संसार में सब झूठ है, ये है संपूर्ण निश्चय। और जहां निश्चय है वहां संपूर्ण विजय है। विजय में भी कौन कौन सी, संकल्प, कर्म, वाणी में, कर्मों में, संबंध संपर्क में, चार प्रकार की विजय उसमें बताई आज पापा ने, इन सभी चीजों में विजय, और चारों चीजों में निश्चय, और तो चारों चीजों में विजय होगी। और जो ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा है वो चिंता से मुक्त होगी, फिक्र से मुक्त होगी, निश्चिंत होगी, कोई चिंता नहीं होगी कि मेरा आगे क्या होगा, यहां आ गए बस अभी वो देखेगा। वो कहानी में दिखाते हैं कि शिवाजी महाराज के जो गुरु थे रामदास, वो केवल वो सन्यासी जैसे थे, तो पहली मुलाकात जब हुई शिवाजी महाराज की रामदास जी के साथ, तो वो पूछते हैं कि आपको कौन चलाता है, आप कहां से खाते हो, कहां से पीते हो, कौन आपकी रक्षा करता है। तो वहां पर ही वो गढ़, वो किला होता है, उस किले जो होते हैं उसमें पत्थरों के बीच से एक झाड़, वे क्या कहते हैं उसको, झाड़ी सी थोड़ी सा प्लांट, उसमें से बेल, बेल जिसको कहेंगे, वो निकलती है। तो वो उनको उसकी तरफ इशारा देकर कहता है कि जो उसकी रक्षा कर रहा है, उसकी पालना कर रहा है, उस पत्थरों के बीच में, वही मेरी भी पालना कर रहा है। तो इतना निश्चिंत, मतलब जो सारे विश्व की पालना करता है वही हमारी पालना करेगा, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्या होगा, कैसा होगा, क्यों होगा, क्या, ये सब कोई भी बात नहीं। हम यहां आए किसके भरोसे पर आए, उसके भरोसे पर आए, तो वही हमारी रक्षा करेगा। जैसे आशीष भाई को बाबा ने सब कुछ सिखा दिया, अब तो वो केवल इंजेक्शन देने की बात नहीं है,
हमको भी इंजेक्शन लगा
सब कुछ कर देते, अगर डॉक्टर नहीं रहा तो ट्रीटमेंट, दवाइयां, सब कुछ दे देते, वहां पहुंचाने से पहले यहां सब कुछ दे चुके होते हैं, हॉस्पिटल में लाने से पहले तो
लोग दे ही जाना चाहते, इसमें मजबूरी नहीं दे दो, फिर हमारे बहन से भी मिलना नहीं चाहते।
हाँ, तो इसके लिए बाबा जब किसी को चुनता है तो उसको योग्य बना देता है, उसने हमको चुना। कल भी मुरली में सुना था ना, घर बैठे बाप मिला, घर बाप के घर में तो बाद में आए, कौन पढ़ रहा था क्या कल, हाँ, तो देवेंद्र भाई, बाप तो बाद में मिला, बाप ने हमको पहले ढूंढा, उसके घर में हम बाद में आए, तो उसमें उसने जब हमको ढूंढा तो जरूर कुछ तो देखा होगा कि मेरे यज्ञ में इसका क्या है रोल, उस वहां से उसने चुना, उस गांव से चुना, उस कितने हजार की जनसंख्या होगी उस गांव की, वहां से चुना, तो जरूर कुछ तो ऐसा होगा कि वो और किसी में नहीं है। तो ऐसी एक एक आत्मा विशेष है बाबा की। तो कल अगर बाबा आते हैं, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे शायद अगर आ भी सकते नहीं भी आ सकते हैं, अगर आज आएंगे पर बहुत कमजोरी है तो पता नहीं, मतलब अभी तो मतलब आ भी सकते नहीं भी आ सकते, कल जयंती बहन बता रहे थे। तो अगर बाबा आते हैं तो परसों हम कल किसका दिया है बहन जी का, हाँ वो तो होगा, अगर उसके बाद में अगर बाबा आते हैं तो 11 तारीख को फिर हम मुरली रिवाइज करेंगे, अगर नहीं आते तो सीधा किसको दिया था, मीना बहन को, मीना बहन को आगे का, ठीक है। अच्छा ओम शांति, परसों के लिए हॉस्पिटल के, हॉस्पिटल
ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू, ग्लोबल हॉस्पिटल